ಸಮಾವೃತಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ ಮೂಢೋಯನ್ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಮವ್ಯಯಂ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಯೋಗಮಾಯಾ ಸಮಾವೃತ ಮೂಢೋಯನ್ನಾಭಿಜಾನಾತಿ ಲೋಕೋ ಮಾಮಜಮವ್ಯಯಂ ರಹಸ್ಯೋಕಿ ಛಾಯಾ ಮೇ ಛಿಪಾಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ ನಿಶಬ್ದ ಆಕಾಶ ಮೇ ಗೀತೇಕ ಅಂಜಾನ್ ರಹಸ್ಯೋಕಿ ಛಾಯಾ ಮೇ ಛಿಪಾಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ ನಿಶಬ್ದ ಆಕಾಶ ಮೇ ಗೀತೇಕ ಅಂಜಾನ್ ಅಜ್ಞಾತ ಕೇ ಗರ್ಭ ಸೇ ಉಠೆ ಅನ್ಸುಲ್ಝಾನ್ ಸ್ವರ್
एक राजा ने सुना कि राज्य में एक बगीचा है और उस बगीचे में असंख्य फूल खिले हैं। इतने फूल खिले हैं कि बगीचे का एक छोटा सा भी हिस्सा बिना फूल के नहीं है। पूरा बगीचा फूलों से लबालब भर गया है। सुंदर सुंदर फूल, रंग बिरंगी फूल, मॉर्निंग ग्लोरी नामक फूल चारों तरफ खिले हैं। ये सुनकर राजा उत्कंठा खुशी से भर गया और उसने खबर पहुंचाई कि मैं कल आ रहा हूं, माली से जाकर कह दो। फूलों का वो बगीचा देखने कई लोगों ने सुनाया कि हमने भी देखा वो बगीचा, इतने फूल हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखे एक ही जगह पर। अपने रथ पर सवार राजा अगले दिन उस बगीचे में पहुंचता है और देखता है वहां एक भी फूल नहीं। ध्यान से देखता है तो किसी कोने में केवल एक ही फूल है, केवल एक। आश्चर्य होता है, वो माली से पूछता है कि मैंने तो सुना था तुम्हारा बगीचा फूलों से भर चुका है, कहाँ है वो सारे फूल? वो माली कहता है, मैंने वो सारे फूल हटा दिए। अब बस ये एक है, आप इसको देखो, इसके समीप बैठो, इस एक में वो सारे समाये हुए हैं। यदि वो सारे होते तो आप कहते, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसका रंग ऐसा है, उसका रंग ऐसा है। अब तुलना के लिए और कोई है ही नहीं, इस एक में वो सब समाये हुए हैं, इस एक में उन सब की सुंदरता है, इस एक में उन सब की खुशबू है। इस एक फूल के समीप भर बैठो और अनुभव करो इस फूल को, जानो इस फूल को, समझो। वो राजा उस फूल के निकट जाता है और कहता है, वाह कितना सुंदर फूल है, मैंने अपने जीवन में असंख्य फूल देखे परंतु ऐसा सुंदर फूल नहीं देखा। वो माली अपने सिर पर हाथ पटकता है और कहता है, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई, मैंने उन सब फूलों को व्यर्थ ही हटा दिया, क्योंकि हटाने का उद्देश्य था कि तुलना ना हो, और वो हटाने के बावजूद भी इस फूल को ना देखते आप उन फूलों को स्मृति में ला रहे हो जो इसके पूर्व में आपने देखे हैं। मैंने अपने जीवन में इससे अच्छा फूल नहीं देखा, अर्थात तुलना, अर्थात कंपैरिजन, अर्थात आप अब भी स्मृति में जी रहे हो, और स्मृति तो मृत है, स्मृति तो राख है, राख में क्या जीना। राख से कैसा कंपैरिजन, चित्त अभी भी अतीत में ही अटका हुआ है, हर फूल अलग है, हर एक चेतना अपने आप में अलग है। एवरी सोल इज यूनिक, हर आत्मा अद्भुत है, अनोखी है, अपने आप में अनूठी है, केवल अनूठी ही नहीं, अपने आप में एक कलाकृति है, नॉट जस्ट यूनिक बट अ मास्टरपीस। जो एक का मार्ग है वो दूसरे का मार्ग कैसे हो सकता है? मेरा मार्ग है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा मार्ग है, इसलिए मेरे पीछे ना आना, मैं जो करता हूं वो ना करना, हर एक को अपना मार्ग खुद निर्धारित करना है। हर एक में अपनी विशेषता है, हर एक अपनी विशेषता से संपन्न है। कंपैरिजन किल्स, तुलना हत्या है। हर एक बच्चा यूनिक है, उसे अपनी प्रतिभा से बढ़ने दो। हर आत्मा अपने आप में भिन्न है। एवरीवन हैज हिज ओन पाथ। हर एक का अपना एक मार्ग है, इसलिए उस यूनिकनेस को पहचानना है, उसके साथ हस्तक्षेप नहीं करना है, इंटरफियर नहीं करना है उसकी यूनिकनेस के साथ। किसी में कुछ है तो किसी में कुछ है। तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, पूछना भी मत। आज सुबह की अव्यक्त वाणी बहुत शक्तिशाली मुरली है सेवा पर, सेवा के नए आयाम, सेवा की नई परिभाषा, सेवा का वास्तविक अर्थ क्या है। रूहानी तारामंडल, शिव और ब्रह्मा अवतरित हुए हैं धरती पर, आसमान के सितारे देखने नहीं, धरती के सितारे देखने के लिए। और सितारे अर्थात वो सितारे प्रकाश फैलाते हैं, ये सितारे प्रकाश फैलाते नहीं, ये स्वयं ही प्रकाश है। सात प्रकार के सितारे और सात सेवा की परिभाषाएं। पहला सितारा ज्ञान का, कुछ आत्माएं हैं जिनमें ज्ञान का अद्भुत सा प्रकाश होता है, एक अद्भुत सी क्लैरिटी। कुछ आत्माएं हैं जो योगी स्टार है, जिनमें योग का प्रकाश है, योग की सहजता है। कुछ आत्माएं हैं जिनमें धारणा है स्वतः ही है, उन्होंने प्रयत्न से नहीं लाई है, स्वतः सहज दिखाई देती है धारणाएं, सहज ही निरंकारिता है। और दूसरे हैं जो इतनी कोशिश और प्रयत्न के बाद भी अपने मैं को दबाने के असफल प्रयास करते रहते हैं, पर वो कूद कर छलांग लगाकर बाहर आ ही जाता है। कितना भी कहो, कितना भी स्वयं को छुपाने की कोशिश करो कि मैं तो निमित्त हूं, परंतु मैं धक्का देकर बाहर निकल ही जाता है बीच में। और ये मैं का विज्ञापन छोड़ जाता है। किसी में धारणाएं सहज है, वो धारणा के सितारे हैं। किसी में सेवा सहज है, कोई होप स्टार है और कोई सक्सेस स्टार है, उम्मीदों के सितारे और सफलता के सितारे। कोई संपन्न है, संपन्न सितारे। तो ऐसे सात प्रकार के सितारे आज बाबा ने देखा। ये रूहानी तारामंडल है, ज्ञान सूर्य और ज्ञान चंद्रमा प्रकट हुए हैं इन रूहानी धरती के सितारों को देखने के लिए। कोई ज्ञान का सितारा, कोई योग का सितारा, कोई गुणों का सितारा, कोई सेवा का सितारा, कोई संपन्न सितारा, कोई उम्मीद का सितारा होप स्टार, और कोई सफलता का सितारा सक्सेस स्टार। उम्मीद भविष्य से जुड़ी हुई है, सफलता अब से जुड़ी हुई है। इसलिए जो सफलता के सितारे हैं, सितारे अपना प्रभाव प्रकृति और मनुष्य आत्माओं पर डालते हैं, सफलता के सितारे अपना प्रभाव उमंग उत्साह के रूप में डालते हैं आत्माओं पर। और जो उम्मीद के सितारे हैं, कभी मोहब्बत कभी मेहनत, ये प्रभाव डालते। तो किसी में ज्ञान का प्रकाश अधिक है, तो किसी में योग की झलक ज्यादा है, किसी में सहज गुण है, किसी में रग रग में सेवा का ही संस्कार है बचपन से, किसी में सब कुछ है। एक तरफ बुद्धि, दूसरी तरफ भावनाएं भी है, एक तरफ मनसा शक्तिशाली तो दूसरे तरफ शब्द भी शक्तिशाली, एक तरफ ऑथोरिटी तो दूसरी तरफ निरंकारिता भी है, एक तरफ सफलता भी है। तो ऐसे सात प्रकार के सितारे। इस मुरली में सेवा क्या है, इसके सात परिभाषाएं दी हैं। सेवा अर्थात क्या? सेवा अर्थात क्या समझने से पहले सेवा अर्थात क्या नहीं, यह समझना जरूरी है। सबसे पहला, सेवा प्रचार नहीं है। प्रचार अर्थात अहम की घोषणा। सेवा संगठित प्रचार प्रणाली नहीं है। सेवा विज्ञापन नहीं है। सेवा अर्थात जबरदस्ती नहीं। सेवा अर्थात आडंबर नहीं, ढोंग नहीं, डर नहीं, कर्तव्य पालन नहीं। ड्यूटी कर रहे हैं बस, वो सेवा नहीं है। सेवा अर्थात सत्ता साम्राज्य का निर्माण करना नहीं। मैं इंचार्ज, वो इंचार्ज, इतने साल से ज्ञान में, उतने साल से ज्ञान में, ये पद वो पद। सेवा अर्थात स्वार्थ नहीं। सेवा अर्थात मैं का विस्तार नहीं। सेवा अर्थात मैं का विज्ञापन नहीं। सेवा अर्थात सौदा नहीं। सेवा अर्थात तुलना नहीं। सेवा अर्थात कंपैरिजन नहीं। ये सेवा अच्छी, ये सेवा अच्छी नहीं, इसकी सेवा अच्छी, उसकी सेवा अच्छी नहीं। सेवा अर्थात जबरदस्ती नहीं। सेवा अर्थात मजबूरी नहीं। सेवा अर्थात बोझ नहीं। सेवा अर्थात बंधन नहीं। सेवा आत्मा से उपजा हुआ संगीत है। सेवा अर्थात भीतर से बहती हुई अनुभूतियों की नदी है। यदि वो नहीं है तो वो केवल दिखावा मात्र है, वो केवल ढोंग मात्र है, आडंबर मात्र है, काम चलाऊ सेवा है, ऊपर ऊपर की सेवा है। मैं मेरे का विस्तार करने वाली सेवा है। तो इस मुरली में बाबा ने सात बातें बताई हैं सेवा क्या है की। सबसे पहला, सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना। सेवा अर्थात जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके प्रति शुभ भावनाएं, उसके प्रति शुभ कामना है। वो चाहे कोई भी आत्मा हो, कितनी भी गिरी हुई क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, हमारा विरोध करने वाली क्यों ना हो, कैसी भी सेवा की पहली परिभाषा है शुभ भावना और शुभ कामना। दूसरा, सेवा अर्थात उनकी जो भावना है उसका फल देना। एक है हमारी भावना उनके प्रति, और दूसरी है, दूसरी परिभाषा, उनकी जो भावना है, उनकी भावना है कि वो हमसे खुशी चाहती है, उस खुशी की भावना का फल देना। वो हमसे शक्ति चाहती है, उस शक्ति की भावना का फल देना, उस प्राप्ति की भावना का फल देना, उस शांति की भावना का फल देना। तो जाके रही भावना, जिसकी जैसी भावना है उसको वही देना, ये है सेवा। वो किस भाव से हमारे पास आया है, उस भाव की पूर्ति करना। यह है सेवा की दूसरी परिभाषा। सेवा की तीसरी परिभाषा है सेवा का मेवा देना। सेवा अर्थात सेंटर खोलना नहीं, सेवा अर्थात कोर्स कराना नहीं, सेवा अर्थात ग्रुप को समझाना नहीं, सेवा अर्थात भाषण देना नहीं। सेवा अर्थात प्राप्ति का मेवा। सेवा अर्थात आत्मा को शक्तिशाली बनाना और उसका संबंध बाप से जोड़ना। सेवा अर्थात भटकाना नहीं, सेवा अर्थात स्वयं से जोड़ना नहीं, सेवा अर्थात उसका, उसकी आत्मा से मिलन करा देना, सेवा अर्थात उसका बाप से मिलन करा देना, सेवा अर्थात उस आत्मा में शक्ति भर देना, उसके संकल्पों में शक्ति भर देना, अर्थात सेवा। तो सेवा की तीसरी परिभाषा है मेवा। पहला भावना हमारी, दूसरा उनकी भावनाओं का फल देना, और तीसरा मेवा। चौथा, सेवा अर्थात त्याग और सेवा अर्थात तपस्या। त्याग अर्थात विनम्रता और तपस्या की ढेर सारी परिभाषा है इस मुरली में बाबा ने दी है। तपस्या अर्थात दृष्टि से सेवा, तपस्या अर्थात चेहरे से सेवा, तपस्या अर्थात लाइट हाउस बनकर की जाने वाली सेवा, तपस्या अर्थात दृढ़ निश्चय, तपस्या अर्थात नशा, तपस्या अर्थात दृढ़ संकल्प, तपस्या अर्थात दृढ़ स्थिति। इतनी सारी परिभाषाएं दी है तपस्या की। स्वयं की शक्तिशाली स्थिति से आत्माओं को शक्तिशाली बनाना, आत्माओं को प्रभावित करना नहीं, अपना सिक्का जमाना नहीं। सेवा अर्थात सत्ता की सीढ़ियों का निर्माण करना नहीं है। सेवा अर्थात सत्ता की सीढ़ियों का निर्माण करना नहीं है। ये बॉस, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये एडमिनिस्ट्रेशन है। सेवा अर्थात त्याग, विनम्रता, सेवा अर्थात तपस्या, और तपस्या अर्थात लाइट हाउस बन के वातावरण को शक्तिशाली बनाना, तपस्या अर्थात चेहरे से सेवा करना, दृष्टि से सेवा करना, तपस्या अर्थात स्थिति से सेवा करना, संकल्प से सेवा करना, तपस्या अर्थात एक बाप में निश्चय, और नशा। ये तपस्या की परिभाषा दी है। क्या हम ऐसी तपस्या कर रहे हैं? जैसे पवित्रता सुख शांति का संबंध है, वैसे त्याग तपस्या और सेवा का संबंध है। तो हमारी सेवाओं में तपस्या समाई हुई हो, कोई मौन में बैठा हुआ है वो भी सेवा ही है, बाबा ने कहा जैसे वो जो संसार के तपस्वी होते हैं उनके दर्शन के लिए लोग आते हैं, वैसे तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे बोल, तुम्हारी दृष्टि ही सेवा करे, यही तपस्या है। तो सेवा अलग और तपस्या अलग। तपस्या सेवा अर्थात कारोबार नहीं, सेवा अर्थात मुझे ये ड्यूटी गई दी गई है ये नहीं, केवल सेवा अर्थात केवल कर्तव्य पालन नहीं। सेवा भाव है, भाव। अगला पांचवा सेवा अर्थात संतुष्टता। बाबा ने कहा जो सेवा तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है वो सेवा है ही नहीं, जो सेवा दूसरों को डिस्टर्ब कर रही है वो सेवा है ही नहीं, वो सेवा अमृत नहीं विष है। जिससे हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, सेवा करने जाओ और डिस्टर्बेंस चालू, सेवा करने जाओ और झगड़े चालू, युद्ध का मैदान है जहां सेवा। बाबा ने कहा ऐसी सेवा छोड़ दो, ये सेवा ही नहीं है। क्या करो ये छोड़कर, एकांत में जाओ, स्व पर चिंतन करो, टेंशन दो, जिसमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, अतृप्ति है, या तो बड़ों से अतृप्ति है, छोटों से अतृप्ति है, साथियों से अतृप्ति है, स्थान से अतृप्ति है, टाइमिंग से अतृप्ति है, सेवा के स्वभाव से अतृप्ति है कि ये सेवा अच्छी नहीं है, ये दूसरी सेवा करनी है, बहुत डिस्टर्बेंस है जिसमें, ऐसी सेवा सेवा है ही नहीं। बाबा ने कहा इसको छोड़ दो, ऐसी सेवा को एकांत में जाओ और सोचो मुझे क्या करना है। सिक्स्थ सेवा अर्थात समा लेना। क्या समाना? अवगुण, कमजोरी, दूसरों के संस्कार, क्योंकि सेवाओं में टकराव होता है, द्वंद होता है। हम जो चाहते हैं कि दूसरा करे वो नहीं करेगा, सेवा अर्थात स्पिरिचुअल रैगिंग नहीं, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। अमृत वेला तुमको उठना ही है, तुमको मुरली सुननी ही है, तुमको बाहर का खाना बंद करना है, तुमको इतना घंटा योग करना ही है, तुमको ऐसा करना है, तुमको वैसा करना है, तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, स्पिरिचुअल बुलिंग। कॉलेज में रैगिंग होती है ना, ये स्पिरिचुअल रैगिंग है, ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, और फिर हाँ के सोचते देखो मैंने कितनी अच्छी सेवा की, अपने बच्चों की अच्छी सेवा की। वो वही करेंगे जो तुमने उनसे न करने के लिए कहा है, रादर वो अपने जीवन का लक्ष्य बनाएंगे मुझे ये नहीं करना है क्योंकि इसने कहा है, ये करके दिखाएंगे, क्या जो उसने कहा है वो नहीं करके दिखाएंगे। सेवा अर्थात हस्तक्षेप नहीं, सेवा अर्थात जबरदस्ती नहीं, ये सेवा है या और कुछ है, इसमें तो केवल मैं का ही पोषण हो रहा है। इसलिए सेवा की छठवीं परिभाषा बाबा ने दी, कमजोरियां दिखेगी, कमियां दिखेगी, फ्लॉज, डिफेक्ट्स, इम्परफेक्शंस, क्योंकि हर एक आत्मा अपनी यात्रा पर है, हम अपनी यात्रा पर है, वो अपनी यात्रा पर है। जैसे मुझ में एक कमी है जो निकलती नहीं, उसमें वो एक कमी है जो नहीं निकल रही है। जैसे मैं गुप्त रूप से अपनी कमी पर काम कर रहा हूं, हो सकता है वो भी काम कर रहा है पर सफलता नहीं मिल रही है, क्या करे, ज्ञान तो उसमें भी है। सेवा अर्थात सहना, समाना, सॉरी, सेवा अर्थात समा लेना। सागर जैसे सब कुछ समा लेता है, सागर में फूल फेंको उसको भी समाता है, चाकू मारो उसको भी समाता है, कुछ भी मारो कुछ भी फेंको कचरा फेंको कुछ नहीं बोलता है, समा लेता है। सेवा अर्थात इंटरफियरेंस नहीं किसी के इंडिपेंडेंस में। हाँ हम गाइड कर सकते हैं बता सकते हैं, परंतु साक्षी होकर न्यूट्रल होकर करेंगी आत्मा वही जो उसे करना है। तुम कितना भी जबरदस्ती करो वो नहीं सुनेंगी, उसको वही करना है। इसके पहले भी सुनाया था, सिगमंड फ्राइड फादर ऑफ साइको एनालिसिस अपनी पत्नी के साथ जाता है, छोटे बच्चे के साथ गार्डन में घूमते हैं सब तरफ, गेट बंद होने का समय हो जाता है, सिगमंड फ्राइड आ जाता है गेट पर, पत्नी भी आ जाती है, बच्चा है ही नहीं, बच्चा कहाँ चला गया, बच्चे को ढूंढते हैं यहाँ वहाँ कहीं नहीं मिलता है। सिगमंड फ्राइड अपनी पत्नी से पूछता है क्या तुमने उसे कहीं जाने से मना किया था, वो कहती हाँ, वो जो फव्वारा है ना वहाँ जाने से मना किया था, वो कहता है वहीं जाओ वही होगा। वो जाते हैं तो देखते हैं पानी में पैर डाल के ऐसे ऐसे कर रहा है। उसकी पत्नी पूछती है तुमको कैसे पता कि वो वहां होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे वही करते हैं जो उनको कहा जाता है मत करो। क्योंकि जो मत करो उसके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, क्या है क्या है। एक बहुत महान संत सिनेमा थिएटर के मालिक से मिलते हैं और कहते हैं मुझे एक बार सिनेमा देखना है। कहते क्यों, क्योंकि वो कहते हैं जीवन भर मैं सबको यही बताते गया हूं मत देखो। सुनते भी गया हूं पर लोग फिर भी जाते रहते, ऐसा है क्या उसमें। पर आप केवल इतना काम करना कि मुझे एकदम पीछे वाली सीट देना जिस जहां मुझे कोई देख ना सके, क्योंकि भगवे वस्त्र ये बैच ये वाइट ड्रेस और चाय की टपरी पर अगर कोई बीके खड़ा हो ब्रह्मा कुमार तो कहता है मुझे पीछे वाली सीट दे देना बिल्कुल अंधेरे में, और मैं प्रवेश भी शुरुआत में नहीं करूंगा बीच में आऊंगा और पहले ही निकल जाऊंगा ताकि कोई देखे ना। सिनेमा थिएटर का मालिक कहता है वो तो ठीक है कोई नहीं देखेगा, पर ये तो आप भी जानते हो कि एक सत्ता ऐसी है जो निरंतर देख रही है। इसीलिए चीजों को जबरदस्ती नहीं छोड़ना है, चीजें व्यर्थ हो जाए तो अपने आप ही छूट जाए वो, जैसे पतझड़ पत्तियां कैसे गिर जाती है अपने आप, झाड़ थोड़ी छोड़ता है उनको, वो सूख गई गिर गई, वैसे अतीत सूख गया और गिर गया और भूल गया, अब उससे कोई कनेक्शन ही नहीं है। जैसे कोई आदत थी एडिक्शन थी दारू तंबाकू बीड़ी, वो ऐसी छूट गई कि अभी वो सामने भी कोई आ जाए तो ठीक नहीं लगता है, अभी उसका कोई आकर्षण ही नहीं। चीजें मीनिंगलेस हो जाए तब वो छूटती है, अर्थहीन हो जाए हमारे लिए तब छूटती है। तो यहां बाबा ने कहा सेवा अर्थात समा लेना, क्योंकि हरेक यूनिक है, हरेक एक मास्टरपीस है, हरेक की यात्रा अपनी है, हरेक के रोग अपने हैं, हरेक का प्रारब्ध अपना है, हरेक की बीमारियां अपनी है, हरेक का भाग्य अपना है, हरेक की यात्रा अपनी है, हरेक के संस्कार अपने हैं, हरेक का प्रारब्ध अपना है, हरेक की विशेषता अपनी है, सब कुछ अलग है, कोई कंपैरिजन का सवाल ही नहीं है इसमें। कंपेयर करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। हरेक के कर्म भोग अलग अलग है, किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ। क्या कंपेयर करें, इसलिए समा लेना सबको। लास्ट सेवा अर्थात सहन करना, किसको, चाहे विरोधी हो चाहे रावण हो, और रावण से भी तेज विरोधी और तीसरा और एक कुछ तो है उसमें, और एक शब्द है, एक बार नहीं 10 बार क्या सहन करना पड़े। तो ये सहन करना अर्थात मरना नहीं है, स्नेह से दिलों में जीना है, अपने सहन करने की क्षमता को, तितिक्षा को बढ़ाना है, क्योंकि हमारे अपने किए हुए पाप और विकर्म हमारे साथ चल रहे हैं। वो आत्माओं द्वारा चुप्त होंगे, प्रकृति द्वारा चुप्त होंगे, किसी ना किसी के द्वारा चुप्त होंगे, परंतु उनका सामना कर नए हिसाब नहीं बनाने, उनको सामने सिद्ध और जिद कर लड़ाई कर नए कार्मिक अकाउंट क्रिएट नहीं करने, जो है वो अपने आप सेटल होते जाए होते जाए होते जाए। तो ये 7 परिभाषाएं हैं मुरली में। सबसे पहला सेवा अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटी जाति का है, बड़ी जाति का है, कैसा भी है। दूसरा सेवा अर्थात उनकी जो भी भाव है, जिस भी भाव से वो आया है, उस भाव को पूर्ण करना। तीसरा सेवा अर्थात मेवा, प्राप्ति उनको करा देना, अनुभूति करा देना कोई चीज की। अगला सेवा अर्थात त्याग, जिसमें जो सेवा हमारे अंदर हमारे अहंकार को पुष्ट कर रही है वो सेवा ही नहीं है। मैंने इतने सेंटर खोले, मैंने इतने लोगों का कोर्स कराया, इतने प्रोग्राम किए, ये सेवा नहीं, ये तो अहंकार ही है। अगला सेवा अर्थात तपस्या, त्याग। सेवा अर्थात संतुष्टता, डिस्टर्ब ना हो, अगर डिस्टर्ब हो रहे हो तो रुकने की आवश्यकता है, थोड़ा ब्रेक लेने की आवश्यकता है, पॉज करने की आवश्यकता है, स्थान को कुछ दिन के लिए बदल दो, कहीं और चले जाओ, क्योंकि कई बार बर्नआउट हो जाता है, वही वही करते 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 करते, वही सुबह उठो, वही अमृत वेला, वही मुरली, वही सेवा, वही सब कुछ करते करते प्रोलॉन्ग्ड डिप्रेशन की स्टेट आ जाती है, एक स्पिरिचुअल डिप्रेशन, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, सुनकर भी न सुनने जैसा होता है। सेवा भी एकदम, कोई कंस्ट्रक्शन की सेवा, कोई किसकी सेवा, सेंटर बढ़ाने की सेवा, कुछ भी करने की सेवा, इंटरेस्ट, टोटल लॉस ऑफ इंटरेस्ट, ना भोजन में इंटरेस्ट है, ना सेवा में इंटरेस्ट है, ना किसी से बात करने में इंटरेस्ट है, और इसको हम समझते हैं वैराग्य है, डिप्रेशन है, बर्नआउट कहते हैं इसको। अगला सेवा अर्थात समा लेना, चाहे कितनी अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की आत्मा है, कैसे कैसे संस्कारों के साथ आ रही है, कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजर के आ रही है जीवन से, कितने उनके भीतर में दर्द समाया हुआ है, वो नहीं बोल रही है, उनका दर्द बोल रहा है, वो रहम की आवश्यकता है वहां पर, भीतर में इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है, इतना आक्रोश है, इतना संताप है, जो बाहर से क्रोध दिखाई दे रहा है वो वास्तव में क्रोध नहीं है, वो चित्कार है चेतना की, भीतर की, जिसे शांति नहीं मिल रही है, इसीलिए वो निंदा है। अगला सहना, इस मुरली में और भी बातें कही है साक्षात्कार की, अंत में क्या क्या होगा, किस किस का साक्षात्कार होगा, 2 बातें बताई है, पर उसमें हम बहुत सारी ऐड कर सकते हैं। एक तो ज्योति बिंदु का साक्षात्कार होगा, फरिश्ते का साक्षात्कार होगा, इसके अलावा और क्या क्या होगा, अंत में आत्माओं को किस किस का साक्षात्कार होगा। पहला ज्योति बिंदु हम, दूसरा फरिश्ता, तीसरा शिव बाबा का साक्षात्कार, चौथा इष्ट देवताओं का साक्षात्कार, पांचवा विश्व की आत्माओं को हम आधार मूर्त और उद्धार मूर्त के रूप में दिखाई देंगे, वो एक साक्षात्कार, और अपने ही हर आत्मा को अपने जीवन का साक्षात्कार होगा, एक सेकंड में सब कुछ देख लेंगे, क्या पाप किए, क्या पुण्य किए, जैसे मरते समय व्यक्ति एक सेकंड में सब दिखाई देता है उसको, दशरथ की कहानी है ना, मरते समय तब तक याद नहीं आया, पर मरते समय याद आया कि हाँ एक शाप था, तुम तड़प तड़प के मरोगे, जैसे हमारा पुत्र श्रवण तड़प तड़प के मरा, वैसे तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे, जो पाप हमने किए, जो विकर्म किए, जिसको धोखा दिया है, जिसकी निंदा की है, जिसकी जिसका अपमान किया है, वो सारे पाप भूत जमगढ़ के रूप में एकदम एक क्षण में, एक क्षण 100 वर्ष के समान होगा, क्या कहते हैं मुरली में, जमदूत, यमदूत, जमघट, वो एकदम चिपकेंगे। इसलिए रोज एक अभ्यास करना है, जो हमसे पाप हो रहे, विकर्म हो रहे, आत्माओं से माफी मांग लेना है, संसार की सभी आत्माओं से, क्योंकि हमें पता नहीं हमने क्या क्या किया, हमें कुछ भी पता नहीं, हम केवल इस जन्म को जानते, इस जन्म का भी बहुत कम जानते हैं, और जो जानते हैं वो भी याद में कहाँ है। हम तो अपनी सेवाओं के नशे में है कि हमने बहुत सेवा की, हमने बहुत अच्छे भाषण दिए, कितने लोगों को प्रभावित किया, कितना लोग आके कहते बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत बड़ा भ्रम है। हाँ, और जो दुखी हो रहे और घायल हो रहे और जिनको चोट लग रही है उनका क्या, और जिनके अहंकार को आहत हो रहा है उनका क्या, उनकी जो असुविधा हो रही है उसका क्या, उनसे भी माफी मांगनी पड़ेगी। तो एक तो साक्षात्कार की बात, एक उसकी बात, और आज का होमवर्क, क्योंकि दो मुरलियां हैं, सबसे पहले तो सेवा क्या है, सेवा को बीच में रखना और उसके एरोज बनाना इधर उधर, इसको कहते हैं माइंड मैपिंग। सेवा की परिभाषा क्या है, एक। दूसरा, सात स्टार, सेवन स्टार इस मुरली में गिना है, ये सेवन स्टार्स का चित्र निकालना। और तीसरा, हाँ ये बहुत अच्छी सेवा है, आज का होमवर्क, किसी एक स्थान पर जाकर बैठ जाओ और बिना बोले सेवा करनी है, चुपचाप आत्माएं आ रही है जा रही है, इधर घूम रही है उधर घूम रही है, केवल उनके प्रति शुभ भावनाएं या उन्हें शक्ति दो कि आत्मा का कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए, इस आत्मा में शक्ति भर जाए, सहनशीलता भर जाए। मन से संकल्प करना है, कहाँ जाके, भीड़ भाड़ में जाके 15 मिनट, आधा घंटा या एक घंटा, चुपचाप जाके बैठ जाओ सड़क के किनारे, आत्माएं आ रही है जा रही है और उनकी हम सेवा कर रहे हैं, बस अनस्पोकन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मुख से कुछ नहीं बोलना है, केवल मन से। तो ये तीसरा कार्य, और आज का दूसरा कार्य दूसरी मुरली से, आज एक दूसरी मुरली भी है 9 तारीख की, 11 तारीख की, ये 9 की थी, दूसरी 11, तो 11 के ग्रुप में हम ये 10 टॉपिक्स देंगे, इन 10 टॉपिक पर केवल एक लाइन लिखनी है। पहला टॉपिक मुरली की ऊर्जा, मुरली की ऊर्जा, ये सारी मुरलियां पहले रिवाइज हो चुकी है, मुरली की ऊर्जा पर केवल एक लाइन लिखनी है। अभी वो एक लाइन कैसी हो, बहुत छोटी सी, जैसे मुरली की सिर्फ वाणी नहीं है, वह आत्मा की बैटरी चार्जिंग है, बस ये हो गई एक लाइन। उसी तरह दूसरा टॉपिक है नजरों की तपस्या, उस पर केवल एक छोटी सी लाइन लिखनी है कोई भी चिंतन करके। तीसरा टॉपिक है संकल्पों की फसल, परिश्तेपन की फुहार, स्मृति की कलम, नैनों से सेवा, आत्मा की थर्ड आय, दृष्टि से वरदान, मौन मुस्कान का विज्ञान, तकदीर की हस्ताक्षर शक्ति। तो ये 10 टॉपिक हैं, इन 10 टॉपिक पर क्या करना है, इनको पढ़ना है, जैसे दृष्टि में वरदान, और इस पर एक ही लाइन लिखनी है। अब किसी लेखक को यदि फिल्म डायरेक्टर आए और कहे कि आपको 50,000 रुपये देने वाले हैं ये एक लाइन लिखने के लिए, तो कैसे लिखेगा वो, ऐसे ही लिख देगा, टू राइट अ सिंगल लिविंग लाइन यू हैव टू स्वेट। यदि एक लाइन लिखनी है, पर कैसी हो वो, जीवंत लाइन, जीवंत लिखना है, तो उसके लिए पसीना बहाना पड़ेगा। इसके पहले भी सुनाया था, उतना पूरा करके क्लास को पूरा करते हैं। लॉर्ड बायरन की, पश्चिम देश का सबसे महान कवि, 3 कवियों में 3 मित्र थे, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स और पर्सी बीसी शेली। एक की मृत्यु 24 साल की उम्र में हो गई, एक की 26 में, एक की 29 में, पर ये तीनों जो कवि है ये इंग्लिश लिटरेचर का आधार स्तंभ है, पूरा एमए लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर इन 3 कवियों के की कविता उसमें रहती है। इतनी कम उम्र में तीनों ने शरीर छोड़ दिया, और तीनों मित्र थे, और तीनों ही क्रांतिकारी थे, जो समाज की विचारधारा थी उससे अलग, इसलिए उनको विरोध बहुत सहना पड़ा, चोट बहुत पहुंचाई उन्होंने समाज को, पर समाज सोया हुआ था, और सोए हुए व्यक्ति को चोट पहुंचाए तो दर्द होता है, उठाओ तो दर्द होता है। तो तीनों ही, तो उसमें से लॉर्ड बायरन जो है वो जब छोटा बच्चा था और स्कूल में टीचर ने कहा कि एक प्रसंग सुनाया बाइबल का, बाइबल में जीसस क्राइस्ट है, एक शादी में जाता है, वहाँ पे जो वाइन है, जो रेड वाइन है, वो ख़त्म हो गई है। तो जीसस जाता है वहाँ पर, पानी के बर्तन रखे हुए हैं, हांडियाँ रखी हुई ऐसे बड़े बड़े सात। तो जीसस जाता है, अपने हाथ से उस पानी को लेता है और वो पानी वाइन में कन्वर्ट हो जाता है, शरबत में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सब लोग पीते हैं तो कहते हैं, ये शरबत कहाँ छिपा के रखा था, ये शरबत कैसे बन गया? तो वो पहला चमत्कार दिखाया हुआ है बाइबल में। अब लॉर्ड बायरन को अब उसके टीचर ये कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, इस पर लिखो, एक घंटे का समय देते। सब लोग लिखते हैं, सारे बच्चे, और ये कुछ भी नहीं करता, छोटा सा बच्चा बैठा रहता है लास्ट तक। टीचर लास्ट में आता है, कुछ करो, पहले ही आलसी हो। तो वो पेपर लेता है, एक लाइन लिखता है, और वो लाइन इंग्लिश लिटरेचर की बहुत फेमस लाइन है, She looked at her master and she blessed and she sighed. पानी के लिए लिख रहा है, पानी ने अपने मालिक की ओर देखा और उसको शर्म आ गई। She looked at her master and she sighed. She felt shy. मतलब वो पानी शरबत बन गया ना, उसके लिए उसने ये लाइन लिखी, क्योंकि पानी का मालिक कौन है? वो प्रकृतिपति परमात्मा। तो यहाँ वो जीसस क्राइस्ट है, उसने अपने मालिक की ओर देखा, वो शर्मा गई। तो लिविंग लाइन लिखना है, ऐसी वैसी लाइन नहीं, लिविंग लाइन। तो ये 10 टॉपिक है, 10 टॉपिक पर एक ही शक्तिशाली लाइन, और एक शक्तिशाली लाइन लिखने के लिए पहले बहुत कुछ लिखना पड़ेगा और उसमें से फिर छाटना होगा, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, फिर ये ठीक है। ये भी किया जा सके, ये प्रैक्टिस भी है, ये प्रैक्टिस भी है और प्रतिभा का निखार भी है। ऑप्शन
प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढोऽयं नापि जानाति लोको मामजमव्ययम् रहस्यात् रहस्यात् अन्तिममध्यर्का सञ्चार रहस्यात् रहस्यात् श्रो परमात्मा की पुकार रहस्यात् रहस्यात् अन्तिममध्यर्का सञ्चार रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान रहस्यों की छाया में छिपा अंतिम ज्ञान निशब्द आकाश में गीत एक अनजान अज्ञात के गर्भ से उठे अनसुलझा स्वर संकेत गूंज रहा अब है अंधेर घड़ी रहस्यांतर रहस्यांतर अंतिम मध्य